Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad Bhumika, presented by Swami Sri Jagdish Puriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
प्रकाशम् मुमुक्षुरु वै शरणमहं प्रपद्ये ओम शान्तिः 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 शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः 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 चिदानन्द भगवान् की सत्य सनातन धर्म की सद्गुरु देव महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव
कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद का विचार प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के इस मंच से हो रहा है। यमराज और नचिकेता का संवाद चल रहा है। नचिकेता ने जैसा कि प्रारंभ से आप लोगों ने श्रवण किया है अपने पिता को देखा था कि वो यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ का प्रयोजन है स्वर्गलोक की प्राप्ति। जिस यज्ञ में अपना सर्वस्व दान दे दिया जाता है, नचिकेता अपने पिता को देख रहे हैं कि पिताश्री यज्ञ में सर्वस्व दान कर रहे हैं परंतु पक्षपात चल रहा है। वस्तुतः सर्वस्व दान नहीं है। सर्वस्व का अर्थ होता है कि व्यक्ति का अपना स्वत्व जिसके ऊपर है, अपने अधिकार की जो भी वस्तु है उसको वो दान में दे दे। परिवार का भी विभाजन हो गया, परिवार का अधिकार का भी विभाजन हो गया। पुत्र का हिस्सा पुत्र को मिल जाए, पत्नी का पत्नी को मिल जाए, भाई का भाई को मिल जाए, बहन का बहन को मिलने के अनंतर अपने हिस्से में जो बचा हुआ है स्वतंत्र रूप से जिसको व्यक्ति जहां चाहे जिस रूप में चाहे वैसे वहां पर उपयोग कर सकता है, वह सर्वस्व दान कहा जाता है। नचिकेता के पिता एक भूल कर रहे थे, जैसा कि आप लोगों ने सुना, उनके पास जो विशेष करके गोधन था, प्राचीन काल का गोधन बहुत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण होता था, उन गौधन में भी जो अच्छी अच्छी श्रेष्ठ गायें थी, दुधारू गायें थी, बछड़ों की मां थी, नई गायें थी, उन गऊं को एक तरफ करके अपने पुत्र के लिए रखा जा रहा था और जो अनुपयोगी गायें थी उन्हीं को ऋत्विजों विप्रों को दान में दिया जा रहा था। इसको देख करके नचिकेता के मन में एक आस्तिक के श्रद्धा का भाव प्रकट हुआ। नचिकेता विचार करने लगा कि जिस प्रकार की गौवें हमारे पिताश्री ऋत्विजों और भूदेवों को दान दे रहे हैं, ऐसी गौओं के दान से उन लोगों को ही प्राप्त कर पाएंगे जहां आनंद नहीं है, अभिष्ट स्वर्ग लोक की प्राप्ति संभव नहीं है। जो आनंद शून्य लोक है, अर्थात आनंद नहीं तो जहां दुख ही दुख है, माने ऐसे दान देने से ऊर्ध्व गति की बजाय अधोगति ही होगी। परंतु पिता को कैसे सचेत किया जाए, आखिर पिता पिता है और पुत्र पुत्र ही होगा, हमें पिता को उपदेश देने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन श्रद्धा भाव से निवेदन तो किया ही जा सकता है। इसलिए श्रद्धावेश करके वहां पर आया, पिता के प्रति श्रद्धा का भाव आया है, जो अपने से बड़े हैं श्रद्धेय हैं उनको दबा करके नहीं कहा जा सकता कि तुम गलत कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं, परंतु उनसे निवेदन प्रार्थना की जा सकती है, सांकेतिक भाषा में अपनी बात को रखा जा सकता है। इसलिए आस्तिक के भाव आया और कहने लगा कि पिताश्री, जिस प्रकार की गऊं का दान दिया जा रहा है, ऐसी दुग्ध दोहा निरिंद्रिया जो गायें हैं, पितोद का जगद तृणा जो गायें हैं, उनको देने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है, आनंद शून्य लोग प्राप्त होते हैं, आप अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं भी तो आपका हूं, संतान के ऊपर माता पिता का ही अधिकार होता है, और चूंकि अभी तो मैं बालक हूं, मैं कुमार हूं, इसलिए मेरे ऊपर भी आपका ही अधिकार है, आपका स्वत्व है, तो जो अपना होता उसको दान में दिया जाता है, ऐसी स्थिति में मैं भी आपका हूं, मुझे किसको दान में देंगे, आप किसको देंगे। एक बार बोला, पिता ने कोई जवाब नहीं दिया, दूसरी बार निवेदन किया, कोई जवाब नहीं मिला, जबकि वो सुन रहे हैं। तीसरी बार भी बालक ने जब वही बात कही, कस्मै माम दास्यसि इति, मुझे किसको देंगे, पिता को क्रोध आया और कहा, तुझे यम को देता हूं। क्रोध में ऐसा ही होता है, मां का छोटा सा बालक होता है, जब उच्छृंखलता करता है, बहुत चंचलता में आ जाता है, मां को किसी घर के और काम काज में लगना होता है, किसी से विशेष फोन पर बात करनी होती है, ऐसे अर्जेंट कोई कार्य में लगी हुई है, और बार बार वो बालक उन्हें विक्षेप करता है, तो मां को भी क्रोध आ जाता है। मां उसको शांत करने की कोशिश करती है, बालक शांत नहीं होता है, तो क्रोध में आकर के मां भी बोल देती है, तुझे मर जाना चाहिए था, पैदा होते ही मां तेरे से परेशान हो गई थी। उसका दिल तो नहीं बोलता है कि मर जाना चाहिए, लेकिन क्षणिक आवेश में आकर के बोल देती है। ये बात भी परम सत्य है कि जब व्यक्ति के सिर पर कोई आवेश आ जाए, लोभावेश विष्ट हो जाए, कोई क्रोधाविष्ट हो जाए, कोई कामाविष्ट हो जाए, ऐसी स्थिति में व्यक्ति का अपना विवेक समाप्त हो जाता है, या यूं कहो कि विवेक दब जाता है। वो क्रोध जो कहलाएगा वही कहना पड़ेगा, लोभ जो करवाएगा वही करना पड़ेगा, कामवर्ती जो करवाएगी वही करना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति का अपना विवेक सो गया है, दब गया है, अभिभूत हो गया है, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसी कारण क्रोधाविष्ट होने के कारण पिता ने बोल दिया तुझे यम को देता हूं, लेकिन उस व्यक्ति का क्रोध पानी की लकीर के जैसा था, थोड़ी ही देर में शांत हो गया। अरे मैंने अपने लाल को क्या बोल दिया, इसको यम को देने का नहीं है, ये तो मेरे हृदय का टुकड़ा है। उधर बालक ने देखा कि पिता के मुंह से बात निकल गई। यज्ञ का एक सिद्धांत होता है कि यज्ञ में दीक्षित होने के बाद तो कम से कम असत्य भाषण न करे, यज्ञ में दीक्षित होने के अनंतर क्रोध न करे, यज्ञ में दीक्षित होने के बाद लोभ न करे, बिल्कुल देवो भूत्वा देवान एजेत, देवता बनकर के देव पूजन करना चाहिए, ये शास्त्र का नियम है। और पिता तीनों ही काम कर रहे हैं, यज्ञ में दीक्षित होकर के क्रोध कर गए, यज्ञ में दीक्षित होकर के लोभाविष्ट हो गए, और यज्ञ में दीक्षित होकर के भी अब अपने मुंह से निकली हुई बात का भी परित्याग करने जा रहे हैं, सत्य पालन से भी विचलित होने जा रहे हैं। देखा कि पुत्र को यम के पास भेजने को तैयार नहीं है, तब वो बालक नचिकेता अपने पिता को फिर निवेदन करने लगा, पिताश्री इस संसार में जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो एक फसल की तरह, धान की तरह पैदा होता है, धान की फसल पक जाती है, फिर वो फसल सूख जाती है, दाने फिर जमीन में गिरते हैं, फिर अंकुरित हो जाते हैं, ऐसे ही संसार में मनुष्य का आना और जाना बना रहता है। शस्यमेव आजायते पुनः, शस्यमेव मर्त्यः पच्यते, वो धान की तरह पकता है और फिर उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को भी यह सोचना चाहिए कि शरीर तो उस फसल की तरह है, उस धान की तरह है, पैदा हुआ है, यहां पर एक कर्म का परिपाक है कि यह शरीर मिला है, शरीर पाकर के बहुत सारे कर्म करेगा, कई कर्म बीज तैयार करता है, और यह शरीर फिर वापस गिर जाता है, पतन हो जाता है, इसका विनाश हो जाता है। यह शरीर का आना और जाना बना रहता है। कल आप सुन रहे थे, प्रजापति ने इंद्र को उपदेश दिया, मघवन मृत्युम वा इदम शरीरम आत्म मृत्युना, ये जो शरीर है वो तो मृत्यु है, मृत्यु से ग्रसित है, इसलिए पिताश्री ये तो रहने वाली चीज नहीं है, मगर व्यक्ति का यश और अपयश रह जाता है। इसका जिसका दुनिया में यश है वो तो जीवन है, और अपयश हो गया तो जीते जी भी मुर्दा ही होता है। इसलिए व्यक्ति को अपने धर्म अपने कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। आप अपनी प्रतिज्ञा को निभाइए कि यम को दे रहे हैं तो भेजिए। बालक की बात सुनकर के नचिकेता उसको भेजने को तैयार हुए, कहा लेकिन कितने शिष्टता पूर्वक पिता को सावधान किया है उस बालक ने। अब जाने को तैयार हो गया नचिकेता, चल पड़ा, यम द्वार पर पहुंचा। यम द्वार पर जाने का एक आध्यात्मिक रहस्य आपको मैंने बताया था, याद दिला रहा हूं। यम साक्षात भगवान है, कल सुन रहे थे, यम तो महात्मा है, यम के द्वार पर जाना माने परमात्मा के द्वार पर जाना, ऐसे साधन पर पहुंच जाना जहां से उस यम को प्राप्त किया जा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से आप देखेंगे तो यम का द्वार तो ये मानव शरीर है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधनों का धाम है और मोक्ष का परमात्मा का द्वार है, यहीं से उस परमात्मा को पाया जा सकता है। लेकिन जब परमात्मा वहां पर भी द्वार पर न मिले तो साधक को क्या करना चाहिए? साधक को त्याग करना चाहिए, भोग का त्याग करना चाहिए, साधक में वैराग्य आना चाहिए, रसासक्ति कटने चाहिए, असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा, वैराग्य शस्त्र के द्वारा आसक्ति को राग को काट दें और अनशनन किए मानी भोग का त्याग किए हुए रहे, कुछ खाए पिए नहीं, अर्थात भोगात्मक दृष्टि नहीं होनी चाहिए, साधक की एक ही दृष्टि होनी चाहिए, यम स्वरूप जो परमात्मा है उस परमात्मा से ही हमें मिलना है। जब तक उस परमेश्वर की उस परमात्मा की हम प्राप्ति न कर लें तब तक कोई भी विषय सेवन नहीं करेंगे, ऐसा साधक को लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। यह अध्यात्म भाव मैंने आपसे निवेदन किया था। दूसरा, कथा के अनुसार एक प्रसंग की दृष्टि से ऐसा देखिए कि यमराज के द्वार पर गए पर यम कहीं बाहर गए हुए थे। अध्यात्म रूप से जिसका चिंतन करेंगे परमात्मा कहीं बाहर नहीं गए हैं, लेकिन बात यह है कि यम एव एष वृणोते तेन लभ्य, वो परमात्मा देखता है कि जो मेरा वरण करे उसी को मैं वरण करता हूं। जब तक वरण में वो पूर्ण पारंगत न हो जाए, परीक्षित न बन जाए, तब तक वो वरणीय परमेश्वर अपना स्वरूप अभिव्यक्त नहीं करता है। उपनिषद का मंत्र आया है, इसी का मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है, न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वेश वृणोते तेन लभ्य तत्शेष आत्मा विवृणोते तनुम स्वाम। वो परमात्मा वो यम प्रवचन से प्राप्त होने वाला नहीं है, न बुद्धि से प्राप्त होने वाला है, न बहुना श्रुते न बार बार सुनने से भी मिलने वाला नहीं है। तो कैसे मिलेगा, कैसे उसकी प्राप्ति होगी? कहा ठीक है, इसका अर्थ यह नहीं है कि श्रवण न करो, प्रवचन न करो, समझो मत, इसका मतलब यह नहीं है। लेकिन केवल प्रवचन कथन कथन, केवल श्रवण श्रवण और केवल बुद्धि का उहा पोही चलता रहे, ऐसा है कि वैसा है कैसा है, बस केवल बुद्धि बघारने मात्र से नहीं मिलेगा, तीनों के साथ साथ में वरण होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। और जब समर्पण होता है तो वो शरण्य परमेश्वर अपना रूप अभिव्यक्त करता है, प्रकट करता है। उसके लिए तीन रात्रि तक भूखा रहना पड़ता है, अनशनन करना पड़ता है। तीन रात्रि नहीं खाने का अर्थ है जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों के भोगों का त्याग। कोई भी भोग न शारीरिक न मानसिक न अहंकारिक, किसी भी भोग का रस जिसके भीतर में नहीं रह जाता है, मात्र एक ही लक्ष्य है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। उस साधक के सामने जब वो यम प्रकट होंगे, वो परमात्मा प्रकट होंगे, तो प्रसन्न होकर के कहते हैं तुम तो अतिथि हो। अतिथि भी इसलिए बोला गया, अनादि काल से जीव भटके हुए हैं, अनादि काल से भटके हुए है। वो परमेश्वर देख रहा है कि कोई आए मेरे द्वार पर कितने लोग हैं जो परमात्मा की ओर मुड़ करके आते हैं। प्राण सिखाने वेतृणत स्वयंभू तस्मात परांग पश्यति, सबकी नजर बाहर है, दृष्टि बाहर है, विषयों की ओर है, बाहर ही बाहर भाग रहे हैं, कोई भी अंदर आने को तैयार नहीं है। कोई कोई धीर पुरुष होता है, प्रत्येगात्मान में क्षत आवृत चक्षु हो। आप जैसे कोई साधक हजारों लाखों से निकल करके आएंगे, जो अपने अंतर्दृष्टि करके उस यम का उस परमात्मा का दर्शन साक्षात्कार करना चाहते हैं, इसलिए परमात्मा परमेश्वर भी सोचते विचार करते हैं। कोई आ गया है तो समझो कि वो तो अतिथि है, अतिथि आया है, कितना प्रतीक्षा कर रहा हूं कोई जीव आए, मेरे ही अंश मेरा ही रूप मेरे से भटक गया, संसार में भटक गया बिखर गया, वो कभी आ जाए लौट करके, पर कब आवेगा उसकी कोई तिथि नहीं है, ये कोई निश्चय नहीं है कि यह जीव कब भगवान की ओर मुड़े, क्योंकि चांस बहुत कम होते हैं, बाहर ही बाहर देखते रहते हैं। इसलिए यहां पर देखा कि वो तो अतिथि है, और वास्तव में ये ऐसा अतिथि है जिसने सारे भोगों का त्याग किया है, कुछ भी भोग नहीं कर रहा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के सारे भोग त्यागे हुए हैं, ऐसा स्थिति तो सम्मान करने योग्य है, प्रणाम करने योग्य है, नमस्कार करने योग्य है, अतिथि है, लेकिन केवल एक परमात्मा को उद्देश्य बनाया, इसलिए उनको कहा कि ब्रह्मन अतिथि नमस्य है, आप तो ब्राह्मण है, ब्रह्म को लक्ष्य बनाए हुए हैं, ऐसा साधक ही नमस्कार करने योग्य होता है, मानो भगवान भी उन्हें प्रणाम करते हैं। बड़ी महत्व की बात आज अध्यात्म भाव सुना रहा हूं, ऐसा कोई साधक जो भगवान की परमात्मा की ओर लग जाए तो परमेश्वर भी उसको प्रणाम करेंगे। हो भागवत में बहुत सुंदर बात आती है, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वेरम समदर्शनम अनुव्रज्यामि अहम नित्यम पूयेते अंग्रिरेणु भी। उद्धव जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव मैं इन त्यागी तपस्वियों के इन संतों के निरपेक्षों के पीछे पीछे ही चला करता हूं, वो जहां चलते हैं मैं उनका अनुगमन करता हूं, जो निरपेक्ष है, जो मुनि है, जो शांत है, जो समदर्शी है, ऐसे तपस्वियों के ऐसे ज्ञानियों के ऐसे साधकों के मैं पीछे पीछे चला करता हूं। क्यों महाराज, क्या आवश्यकता पड़ गई आपको उन अकिंचनों के पीछे चलने की, आपको क्या आवश्यकता पड़ी? भगवान भी कहने लगे कि मुझे आवश्यकता यह पड़ी, जब वो महान पुरुष चलेंगे और उनके चरणों की जब धूल उड़ती है, वो धूल मेरे अंग पर लगे तो उससे मैं भी पवित्र हो जाऊंगा, तो ऐसे निष्ठावानों के तो भगवान भी पीछे चलते हैं, भगवान के भी वो प्रणम्य हैं। मानस में भगवान कहते हैं, जब शबरी को नवधा भक्ति का वर्णन कर रहे हैं और सप्तम भक्ति का वर्णन करते हैं, तो भगवान कहते हैं सातव सब मोमय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। सारा का सारा संसार जब मेरे जैसा ही दिखाई पड़े, सिया राम मय सब जग जानी, दृष्टि प्राप्त हो जाए, जिस भक्त को यह दृष्टि मिलती है तो समझो कि वो सातवीं भक्ति में पहुंच गया है। सब जगह मुझ परमेश्वर को देखने लगे, मेरी ही लीला को देखने लगे, सप्तम भक्ति में पहुंच गया है। परंतु वहां एक विशेषता उसमें और भी आती है, मोते अधिक संत, कोई महान पुरुष नचिकेता जैसा कोई त्यागी तपस्वी, सारे भोगों का त्याग किया हुआ कोई महान पुरुष मिल जाए, तो भगवान श्री राम कहते हैं मोते अधिक, मेरे से भी ज्यादा उसका महत्व हो जाता है। तो ऐसे जो प्रणम्य है, ब्रह्म जिसका लक्ष्य बना हुआ है, उस नचिकेता को महाराज यम भी कहते हैं नमस्ते अस्तु स्वस्ति मे अस्तु, आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है, मेरा कल्याण हो, स्वस्ति हो, आप तो नमस्कार करने योग्य है। माने यहां पर साधक की बड़ी महिमा है, वो ऐसी महिमा जो साधक यदि लौकिक भोग का त्याग कर रहा है और परमेश्वर को उद्देश्य बना लेता है, तो भगवान भी कहते हैं अरे तुम तो प्रणाम करने योग्य हो, महान पुरुष हो। इसलिए तो आचार्य शंकर ने नचिकेता को प्रणाम किया है, श्रद्धा से प्रणाम किया है, ओम नमो भगवते व्यवस्वत्वाय, व्यवस्वत्व को प्रणाम करता हूं, नचिकेत से च, और उस महान नचिकेता को भी मैं प्रणाम करता हूं, साक्षात शंकरम शंकराचार्यम, शंकर रूप भगवान शंकराचार्य भी नचिकेता को प्रणाम कर रहे हैं, ये प्रणम्य है। ऐसी स्थिति आने पर कहा कि अब मांगो कोई तीन वरदान मांगो, क्योंकि तुमने भोगों का त्याग किया है, तीन रात्रि तक कुछ नहीं खाया, अर्थात ये जितना भोग व्यवहार है ये रात्रि में ही होता है, ये प्रकाश में नहीं होता है, जितना भी भोग जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, आ रहा हूं जा रहा हूं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये जागृत का जितना भी व्यवहार है ये अज्ञान रात्रि में है, अज्ञान रात्रि में ही है, स्वाप्निक जितना व्यवहार होता है सारा का सारा उस अज्ञान रात्रि में है, और प्रगाढ़ नींद की अज्ञान का जो अनुभव है वो भी उस अज्ञान रात्रि के अंदर ही है। ज्ञान प्रकाश में तो ये तीन रात्रि होगी ही नहीं, तीन भेद होंगे ही नहीं, ज्ञान प्रकाश में तो बस केवल अपना स्वरूप है, स्वरूप है, इसके सिवाय और कुछ नहीं। इसलिए तीन रात्रि बिना खाए पिए रहने का अर्थ है सारा जो व्यवहार होता है वो रात्रि में एक ही रात एक ही अविद्या तीन रूप को प्राप्त हो रही है, स्थूल सूक्ष्म और कारण रूप को। ये जो अविद्या प्राप्त हो रही है इस स्थूल सूक्ष्म कारण जगत में ही जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में ये जीव सब भोग कर रहा है, परंतु जिस साधक ने सबका त्याग कर दिया है इसके लिए यमराज कहते हैं कि धन्य हो, तुमने तो तीनों अवस्थाओं के और स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों के तीनों पदार्थों से होने वाले भोग सबका तुमने त्याग कर दिया, इसलिए कोई तीन वरदान मांगो, अब तो ऐसी वर को मांगो, श्रेष्ठ को मांगो, जिसको मांगने के बाद फिर मांगना न रह जाए। तब नचिकेता विचार करने लगे, वो एक अभिष्ट परमात्मा उद्देश्य बनने पर भी, मानव जीवन मिल जाने पर भी, यमराज जैसे साक्षात भगवान रूप सदगुरु मिल जाने पर भी, हालांकि ये गुरु है तो गुरु भी तो परमात्मा ही तो होता, परमेश्वर ही तो होता है, स्वाध्याय के समय प्रतिदिन इस मंत्र से बोला जाता है, ईश्वरो गुरु रात्मेति मूर्ति भेद विभागिने, ईश्वर गुरु और आत्मा का सिर्फ मूर्ति का भेद है, तत्व एक है उसमें कोई भेद नहीं है, इसलिए साक्षात ये तो गुरु है, लेकिन गुरु मिल जाने पर भी त्याग होने पर भी यदि कोई प्रतिबंध पड़ा हुआ है तो जरूरी नहीं कि साधक को ज्ञान हो ही जाए। ब्रह्मसूत्र में बादरानी व्यास ने बहुत सुंदर विचार किया है, वहां पर प्रश्न किया गया कि इसी जीवन में मनुष्य को ज्ञान हो सकता है कि नहीं, प्रश्न किया गया है, इस एक ही जीवन में मानव जीवन में परमात्मा का साक्षात्कार भूत ज्ञान हो सकता है कि नहीं। बादरानी व्यास कहने लगे, अहिकम अपि अप्रस्तुत प्रतिबंधे तद दर्शनात्, हां यहां पर भी हो सकता है, यहां माने इसी जीवन में, मानव जीवन में, यहीं पर जिस जीवन में बैठे हुए हैं और जिस स्थिति में बैठे हुए हैं, प्रेमपुरी के जिस हॉल में बैठे हुए हैं, यहीं पर भी ज्ञान हो सकता है, भी हो सकता है, माने हो ही जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है, कब अप्रस्तुत प्रतिबंधे, कोई प्रतिबंध न हो, कोई रुकावट न हो, कोई बाधा न हो, कोई पर्दा न हो, तो यहां पर भी हो सकता है, कोई प्रतिबंध यदि है तो जरूरी नहीं कि यहीं पर ज्ञान हो जाए। तद दर्शनात् व्यास कहते हैं कि ऐसा देखा गया है, राजर्षि भरत